मान लीजिए कि किसी बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक भयंकर पीआर डिजास्टर आ गया हो, मतलब कुछ ऐसा हुआ हो जिससे पूरी दुनिया को लगने लगे कि अब तो बस इस कंपनी का नामो निशान मिट जाएगा।
हाँ, ऐसा तो अक्सर होता ही है कॉर्पोरेट दुनिया में।
बिल्कुल। और सोचिए उनके सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता को अचानक चुप करा दिया गया हो, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हों और मीडिया ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया हो।
मतलब एक तरह से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया हो।
हाँ, एकदम ब्लॉक। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। वो भयानक पीआर आपदा जो उस कंपनी को खत्म करने वाली थी, अचानक इतिहास का सबसे सफल वायरल मार्केटिंग अभियान बन जाती है।
अरे वाह, मतलब पासा ही पलट गया।
एकदम पलट गया। जिस संदेश को कुचलने की कोशिश की गई थी, वो पहले से भी ज्यादा तेजी से फैलने लगता है, और वो भी उन खास लोगों के बीच जिन तक पहुंचना आम हालात में पूरी तरह से असंभव था।
ये तो बहुत ही दिलचस्प स्थिति है, और देखा जाए तो इतिहास में अक्सर ऐसा होता भी है।
सच में।
हाँ, मतलब जो घटना किसी बड़े आंदोलन का अंत लगती है ना, वो असल में एक बहुत बड़े विस्फोट की शुरुआत होती है। जब हम घटनाओं को केवल उनके भारी आवरण से देखते हैं, तो रुकावटें सिर्फ रुकावटें लगती हैं।
हाँ, हम इंसान तो बस सामने की परेशानी ही देखते हैं।
बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस सतह के थोड़ा नीचे जाएं, तो पता चलता है कि वे सीमाएं एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। इंसान का दिमाग हमेशा ये मान बैठता है कि शक्ति हमेशा स्वतंत्रता में है, लेकिन कभी कभी असली प्रभाव पूरी तरह से बंधे होने की स्थिति में पैदा होता है।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम ठीक ऐसी ही एक ऐतिहासिक और नजरिया बदल देने वाली घटना को डिकोड कर रहे हैं।
हाँ, और ये घटना सच में बहुत कुछ सिखाती है।
बिल्कुल। तो हम डॉक्टर मैथ्यू एस हार्मन के एक बेहद दिलचस्प शिक्षण सुसमाचार की प्रगति यानी द प्रोग्रेस ऑफ द गॉस्पल, जो फिलिपियों 1:12-18 पर आधारित है, उसके जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रेरित पॉलुस, जिन्हें अपोस्टल पॉल भी कहा जाता है, उनकी रोम में हुई नजरबंदी ने उनके संदेश को रोकने के बजाय उसे सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचा दिया।
ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बल्कि एक मास्टर क्लास है कि कैसे कोई भी इंसान अपनी सबसे बड़ी सीमाओं और कठिनाइयों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देख सकता है।
सही कहा।
इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा पहलू यही है कि ये मानवीय तर्क को पूरी तरह से पलट देते हैं। डॉक्टर हामन का शोध हमें दिखाता है कि पॉलुस का अनुभव सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक खाका है।
एक ब्लूप्रिंट की तरह है ना।
हाँ बिल्कुल। ये सिखाता है कि जीवन की उन परिस्थितियों को जिन्हें इंसान आमतौर पर तकलीफ या अन्याय का नाम देकर खारिज कर देता है, उन्हें एक बहुत बड़े और जटिल उद्देश्य के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कैसे देखा जाए।
तो इस कहानी के असली प्रभाव को समझने के लिए हमें ये महसूस करना होगा कि शारीरिक और मानसिक रूप से उस वक्त क्या चल रहा था। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं, तो ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी।
हाँ, ये एक लंबा सफर था।
जी, ये लगभग 57 ईस्वी के आसपास की बात है। पॉलुस यरूशलेम पहुंचते हैं और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और वहां से उनकी मुश्किलें सच में शुरू होती हैं।
बिल्कुल। इसके बाद उन्हें कैसरिया मारिटिमा में पूरे 3 साल तक एक लंबी और थका देने वाली कैद काटनी पड़ती है। 3 साल?
हाँ, कोई भी इंसान इतने में टूट जाएगा।
वही तो। फिर उन्हें रोम ले जाया जाता है, लेकिन वो सफर भी आसान नहीं था। रास्ते में एक भयंकर समुद्री तूफान आता है, उनका जहाज डूब जाता है और वे किसी तरह जान बचाकर अंततः 60 ईस्वी के आसपास रोम पहुंचते हैं।
मतलब लगातार संघर्ष और जान का खतरा।
हाँ, कोई भी इंसान इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद हार मान लेगा, लेकिन रोम पहुंचकर जो होता है वो और भी अजीब है। वे किसी अंधेरी ठंडी कालकोठरी में नहीं फेंके जाते।
बिल्कुल नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, रोम की वो कैद आम कैदियों वाली नहीं थी। रोमन कानून के तहत पॉलुस की स्थिति थोड़ी अलग थी।
अच्छा, मतलब किस तरह की स्थिति थी?
वे अपने ही खर्चे पर एक किराए के घर में नजरबंद थे। रोमन साम्राज्य उनके रहने, खाने या कपड़ों का कोई खर्च नहीं उठा रहा था।
अरे, मतलब खुद के पैसे से जेल काट रहे थे?
हाँ, एक तरह से। उन्हें पूरी तरह से बाहर के लोगों के दान और मदद पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इस नजरबंदी की सबसे क्रूर और दिलचस्प शर्त ये थी कि वे एक पल के लिए भी अकेले नहीं थे।
एक पल के लिए भी नहीं?
बिल्कुल नहीं। उन्हें रोमन प्रिटोरियन गार्ड्स के साथ 24 घंटे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। हर 4 से 6 घंटे में गार्ड्स की शिफ्ट बदलती थी और एक नया सैनिक आकर उनके साथ जंजीर से बन जाता था।
बाप रे।
और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रिटोरियन गार्ड्स गली मोहल्ले के कोई मामूली सिपाही नहीं थे।
एकदम सही।
वे बहुत खास थे।
हाँ, जो ऐतिहासिक डेटा हमारे पास है वो बताता है कि ये लगभग 9,000 कुलीन सैनिकों का एक इलीट समूह था। ये इतने ताकतवर थे कि रोम की पूरी राजनीति इनके इशारों पर चलती थी।
मतलब किंग मेकर्स थे वो लोग।
बिल्कुल। ये वो लोग थे जो सम्राटों को गद्दी से हटा सकते थे या रातों रात किसी नए व्यक्ति को सम्राट बना सकते थे।
हाँ, प्रिटोरियन गार्ड्स रोम के सत्ता तंत्र का सीधा हृदय थे। वे सम्राट के व्यक्तिगत अंग रक्षक थे और सैन्य पदानुक्रम में सबसे ऊंचे पायदान पर थे। उनके पास असीमित अधिकार और प्रभाव था।
तो ये तो बहुत ही अजीब स्थिति हो गई ना।
हाँ, अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वो कैदी है जिसके पास अपनी जीविका चलाने तक के पैसे नहीं है, जो एक साधारण से किराए के मकान में है। और दूसरी तरफ जंजीर के उस पार वो सैनिक है जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की रक्षा करता है। डॉक्टर हामन इस बात पर जोर देते हैं कि पॉलुस का संदेश धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पूरे प्रिटोरियन गार्ड कैंप में फैल गया।
यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जरा उस दृश्य की मानसिक कल्पना कीजिए। एक प्रिटोरियन गार्ड जो अपनी शक्ति के नशे में चूर है, अपनी 4 से 6 घंटे की शिफ्ट के लिए आता है और पॉलुस से आके बंध जाता है।
हाँ, उसे तो लग रहा होगा कि ये कोई आम कैदी है।
बिल्कुल। और पॉलुस के नजरिए से देखें तो ये एक कैप्टिव ऑडियंस थी, यानी ऐसे श्रोता जो वहां से चाहकर भी भाग नहीं सकते।
हाँ, वो चाहकर भी जंजीर नहीं खोल सकता था।
भाई तो मैं सोच रहा हूं कि गार्ड्स के बैरक में कैसी बातें होती होंगी। कोई गार्ड अपनी शिफ्ट पूरी करके जाता होगा और दूसरे से कहता होगा, भाई तू कुछ भी कर ले, मेरी शिफ्ट तू ले ले, मैं उस आदमी के साथ और 4 घंटे नहीं बैठ सकता।
हाँ, वो गार्ड पक्का परेशान हो गया होगा।
बिल्कुल। वो कहता होगा वो लगातार इसराइल के एक सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति के बारे में बात करता रहता और वो चुप ही नहीं होता।
हाँ, ये तो एकदम वो जो कहते हैं ना, सिर दर्द बन गया होगा उनके लिए।
सही कहा। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट में बीच की सीट पर फंस जाएं और आपके बगल वाला सयात्री लगातार किसी विषय पर भूलता रहे।
और आप कहीं जा भी नहीं सकते।
हाँ, आप वहां से उठकर जा नहीं सकते, लेकिन अंततः 30,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी वही बातें आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देती
है। हाँ, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी पीआर मैनेजर कहेगा कि अपने मुख्य वक्ता को एक कमरे में बंद कर देना सबसे बड़ी आपदा है।
बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा।
पॉलुस का काम तो शहर शहर जाकर भीड़ को संबोधित करना था, लेकिन ईश्वर की रणनीति यहाँ पूरी तरह से विपरीत थी।
कैसे?
अगर पॉलुस एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में प्रिटोरियन गार्ड्स के कैंप में जाकर उन्हें उपदेश देने की कोशिश करते तो उन्हें शायद गेट से ही भगा दिया जाता या मार दिया जाता।
हाँ, वो गार्ड्स किसी आम आदमी को अंदर थोड़ी ना आने देते।
बिल्कुल। ये एक ऐसा समूह था जो आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर था, लेकिन एक कैदी के रूप में पॉलुस को रोम के सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ बैठकर बात करने का वीआईपी एक्सेस मिल गया था।
अरे वाह, वीआईपी एक्सेस।
हाँ, विडम्बना ये है कि जंजीरों ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उन्हें वो मंच दे दिया जो पैसे या रुतबे से कभी नहीं खरीदा जा सकता था।
और इस अजीबोगरीब रणनीति के नतीजे भी सामने आए। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 4:22 में पॉलुस जब अपना पत्र समाप्त कर रहे होते हैं तो वे विशेष रूप से सम्राट के घराने के विश्वासियों की ओर से अभिवादन भेजते हैं।
ये कोई छोटी बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
इसका सीधा सा मतलब है कि उस पहरेदारी और 4-6 घंटे की उन लगातार वार्ताओं का नतीजा ये हुआ कि रोम के सम्राट के अपने महल के भीतर सत्ता के सर्वोच्च कलियारों में लोग उनके संदेश को स्वीकार करने लगे थे।
हाँ, एकदम अंदर तक संदेश पहुंच गया था।
जी, यह उस पीआर आपदा के सबसे बड़े वायरल मार्केटिंग अभियान में बदलने का सबसे सटीक और ऐतिहासिक सबूत है।
बिल्कुल। लेकिन इस घटना का प्रभाव सिर्फ प्रिटोरियन गार्ड या सम्राट के महल तक ही सीमित नहीं रहा। कहानी का एक और पहलू है जो मानवीय मनोविज्ञान को पूरी तरह से चुनौती देता है।
अच्छा,
और वो क्या है?
पॉलुस की कैद का असर रोम के स्थानीय विश्वासियों पर भी पड़ा, और वो असर ऐसा था जिसकी कोई भी समाजशास्त्री, भविष्यवाणी नहीं कर सकता था।
हाँ, इस पूरी चर्चा में ये मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। मानव स्वभाव तो सीधा सा गणित लगाता है, जब किसी आंदोलन का सबसे बड़ा नेता गिरफ्तार हो जाए, जंजीरों में जकड़ दिया जाए, तो उसके अनुयायियों को डर जाना चाहिए।
आमतौर पे तो लोग डर कर भाग ही जाते हैं।
बिल्कुल,
उन्हें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए ताकि अगला नंबर उनका ना आए। लेकिन हाँ, डॉक्टर हामन का शोध बताता है कि पॉलुस को कैद में देखकर रोम के अन्य विश्वासी डरे नहीं, बल्कि वे सुसमाचार का प्रचार करने में और भी अधिक निडर हो गए।
हाँ, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है।
वे अचानक सड़कों पर बिना किसी खौफ के सामने आने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मनोविज्ञान के हिसाब से तो ये बिल्कुल उल्टी प्रतिक्रिया है। तो ये लोग अचानक इतने निडर कैसे हो गए?
जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो ये बहुत ताकीक लगने लगता है। जब आप देखते हैं कि जिस बात का आपको सबसे ज्यादा खौफ था, जैसे गिरफ्तार होना, जंजीरों में बंधना या मौत का सामना करना, वो आपकी नेता के साथ हो चुका है।
हाँ, मतलब सबसे बुरा जो हो सकता था वो हो गया।
बिल्कुल, और वो नेता जेल में भी पूरी तरह से शांत, सुरक्षित और अडिग है, तो उस डर का हवा टूट जाता है। इंसान हमेशा अज्ञात से डरता है। जेल का डर अक्सर जेल जाने से ज्यादा बड़ा होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही।
रोम के विश्वासियों ने देखा कि पॉलुस कैद में है, लेकिन उनका संदेश कैद में नहीं है। डॉक्टर हामन समझाते हैं कि उनका यह नया आत्मविश्वास उनके अपने भीतर की किसी अचानक जागी हिम्मत का नतीजा नहीं था, बल्कि यह प्रभु में उनके विश्वास के गहराने का परिणाम था।
प्रभु में विश्वास।
हाँ, यह प्रेरितों के काम, जिसे हम एक्ट्स कहते हैं, उसके 4:29-31 की उस घटना का सीधा प्रतिबिंब है, जहाँ शुरुआती विश्वासी धमकियां मिलने के बजाय और अधिक निडरता की प्रार्थना करते हैं।
मतलब निडरता एक तरह से संक्रामक हो गई थी, है ना? कंटेजियस हो गई थी।
हाँ बिल्कुल।
जब आप किसी को बिना डरे आग में चलते देखते हैं और आग उसे जलाती नहीं, तो आपको भी लगता है कि शायद इस आग में जलने से बचने का कोई मजबूत रहस्य है जो दुनिया नहीं जानती।
बहुत सही कहा। यह मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े सिद्धांत को सामने लाता है, जिसे डॉक्टर हामन इंसानों का डर बनाम ईश्वर का डर कहते हैं।
फियर ऑफ मैन वर्सेस फियर ऑफ गॉड।
हाँ,
इंसान आमतौर पर निडरता इसलिए खो देता है क्योंकि वो इस बात की बहुत ज्यादा परवाह करता है कि समाज क्या सोचेगा, अधिकारी क्या करेंगे या उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा।
हाँ, हम इंसान लोग तो यही सब सोचते हैं।
बिल्कुल, लेकिन जब किसी व्यक्ति को ये गहराई से एहसास होता है कि जिस अनंत दंड या ईश्वरीय न्याय का वे सामना करने वाले हैं, वो रोम की किसी भी जेल या भासी से कहीं ज्यादा गंभीर है, तो दुनियावी डर बहुत छोटा लगने लगता है।
पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है।
हाँ।
जब अनंत काल की वास्तविकता समझ आ जाती है तो इंसान का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारा डर ही असल में हमारी सबसे बड़ी कैद है, लोहे की जंजीरें नहीं। लेकिन जैसे ये निडरता फैली और संदेश का प्रचार तेज हुआ, एक नई और बहुत ही मानवीय समस्या खड़ी हो गई।
हाँ, जहाँ लोग होंगे वहाँ कुछ ना कुछ राजनीति तो होगी।
बिल्कुल, सफलता के साथ अक्सर राजनीति भी आ जाती है। डॉक्टर हारमन यहाँ प्रचार करने वालों के बीच दो बिल्कुल अलग अलग मंशाओं वाले समूहों का जिक्र करते हैं।
हाँ, ये इंसानी फितरत का वो स्याह पहलू है जो हर युग में देखने को मिलता है। जब पॉलुस की वजह से संदेश फैलना शुरू हुआ तो रोम में दो तरह के लोग खड़े हो गए।
कौन से दो तरह के?
एक समूह वो था जो सच्चे प्रेम और सद्भावना से प्रचार कर रहा था। वे पॉलुस का सम्मान करते थे और उनके काम को आगे बढ़ाना चाहते थे।
ये तो अच्छा समूह था। और दूसरा?
लेकिन एक दूसरा समूह भी था जो पूरी तरह से ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित था।
अच्छा, मतलब उन्हें जलन हो रही थी।
बिल्कुल, उन्हें लगा कि चूंकि पॉलुस अब जेल में बंद है और मंच खाली है, तो ये उनके लिए खुद को मुख्य नेता के रूप में स्थापित करने का सबसे सुनहरा मौका है।
अरे बाप रे, मौके का फायदा उठा रहे थे।
हाँ, वे प्रचार इसलिए कर रहे थे ताकि पॉलुस के लिए जेल में रहते हुए मानसिक और भावनात्मक मुश्किलें पैदा कर सके और अपनी खुद की एक बड़ी फॉलोइंग बना सके।
ये तो कुछ कुछ कॉर्पोरेट दुनिया की उस स्थिति जैसा है जहां आपकी कोई प्रतिद्वंदी कंपनी आपका मजाक उड़ाने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगाए।
बिल्कुल वैसा ही।
हाँ, उनकी नीयत पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की है, लेकिन उस होर्डिंग पर आपके ब्रांड का नाम इतने बड़े अक्षरों में लिखा है कि अचानक आपके ग्राहकों की संख्या दोगुनी हो जाती है।
हाँ, एकदम सही उदाहरण दिया आपने।
नीयत गलत थी, मंशा जहरीली थी, लेकिन प्रचार आपका ही हो गया।
हाँ।
पौलुस की प्रतिक्रिया भी इसी तरह के किसी उच्च स्तरीय नजरिए को दर्शाती है ना।
हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़े तो पौलुस की ये प्रतिक्रिया उनकी असाधारण परिपक्वता को दिखाती है। डॉक्टर हारमन इसे बहुत खूबसूरती से गलातियों यानी गैलेशियंस 1:8-9 के साथ कंट्रास्ट करते हैं।
वहाँ क्या हुआ था?
वहाँ पौलुस ने उन लोगों को श्राप दिया था जो गलत संदेश, जिसे डिफरेंट गॉस्पेल कहते हैं, वो फैला रहे थे। जब बात संदेश की शुद्धता की आती थी तो पौलुस बिल्कुल समझौता नहीं करते थे।
हाँ, मतलब संदेश गलत नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ रोम की स्थिति में कहानी अलग थी। जो ईर्ष्यालु लोग प्रचार कर रहे थे उनका संदेश बिल्कुल सही था, बस उनके दिल की मंशा गलत थी।
तो पौलुस ने इस पर क्या कहा? क्या उन्होंने जेल से पत्र लिखकर उन लोगों की निंदा की या अपना गुस्सा जाहिर किया?
उन्होंने जो कहा वो किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, चाहे दिखावे से हो या सच्चाई से, संदेश तो फैलाया जा रहा है और मैं इसी में खुश हूँ।
क्या बात है, इतनी बड़ी सोच।
हाँ, वे गलत मंशा को सही नहीं ठहरा रहे हैं। वे जानते हैं कि वे लोग ईर्ष्यालु हैं, लेकिन वे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और अहंकार से इतने मुक्त हो चुके हैं कि उन्हें सिर्फ अंतिम परिणाम से मतलब है।
ईगो को बीच में नहीं आने दिया।
बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों की गलत नीयत को पहचान सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उस गलत नीयत से भी अनजाने में कोई बहुत बड़ा और सही काम हो रहा है तो हमें उस व्यापक तस्वीर को देखकर खुश होना चाहिए।
व्यक्तिगत अहंकार को मिशन के आड़े ना आने देना, यह आज की दुनिया में एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। अब जब हम इस संदेश के फैलने और उसे स्वीकार करने की बात कर रहे हैं तो स्रोत सामग्री में डॉक्टर हारमन के जीवन का एक बहुत ही व्यवहारिक किस्सा है जो बौद्धिक आपत्तियों और वास्तविक हृदय परिवर्तन के बीच की बहस को सामने लाता है।
हाँ, ये सब बहुत ही दिलचस्प है।
डॉक्टर हारमन ने एक धर्मनिरपेक्ष विश्वविद्यालय यानी सेक्युलर यूनिवर्सिटी में काम किया था जहाँ उन्हें अक्सर छात्रों की अनगिनत बौद्धिक आपत्तियों का सामना करना पड़ता था।
ये हिस्सा आज के आधुनिक समाज के लिए शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। डॉक्टर हारमन इन बौद्धिक आपत्तियों को डिफीटर बिलीव्स कहते हैं।
डिफीटर बिलीव्स?
हाँ, मतलब ऐसी मान्यताएं जो एक इंसान के दिमाग में इतनी गहराई तक बैठी होती हैं कि वे उसे कोई भी नई सच्चाई स्वीकार करने से रोकती हैं।
अच्छा, जैसे कोई ब्लॉक लगा हो दिमाग में।
बिल्कुल, जब डॉक्टर हारमन विश्वविद्यालय में थे तो छात्र अक्सर विज्ञान इतिहास या दर्शन शास्त्र से जुड़े अनगिनत सवाल लेकर आते थे, लेकिन डॉक्टर हारमन ने एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न देखा।
कैसा पैटर्न?
वे उन छात्रों से एक सीधा सवाल पूछते थे, अगर मैं आपके इन सभी बौद्धिक और तार्किक सवालों का पूरी तरह से संतुष्टजनक जवाब दे दूं, तो क्या आप अपना जीवन मसीह को सौंप देंगे?
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अक्सर उस सवाल का जवाब नहीं होता था। मतलब वे सारी बौद्धिक आपत्तियां, वे सारे लंबे चौड़े तार्किक सवाल बस एक दिखावा थे।
यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है। डॉक्टर हारमन बताते हैं कि ये बौद्धिक आपत्तियां अक्सर केवल एक बहाना, एक स्मोक स्क्रीन होती हैं।
स्मोक स्क्रीन मतलब असल बात छिपाने के लिए धुएं का पर्दा?
इतना सही। लोग तर्क का इस्तेमाल सच्चाई को खोजने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई से बचने के लिए करते हैं। असली रुकावट या कहें असली बॉटलनेक दिमाग में नहीं बल्कि इच्छा शक्ति में होता है।
मतलब वो बदलना ही नहीं चाहते।
हाँ, लोग अपनी वर्तमान जीवन शैली, अपनी आदतों और अपनी नैतिक स्वतंत्रता में कोई बदलाव नहीं चाहते। उन्हें भीतर से पता होता है कि अगर उन्होंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो उन्हें अपना जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा।
हाँ, और वो सबसे मुश्किल काम है।
इसलिए आप किसी इंसान को केवल तर्क से बहस में हरा कर उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते।
एक मिनट, ये बात थोड़ी चुभने वाली है, तो आखिर इस सब का क्या मतलब है?
क्या मतलब है?
मेरा मतलब है, अगर सारी आपत्तियां सिर्फ बहाने हैं और असली समस्या जीवन शैली बदलने का डर है, तो फिर हम तर्कों पर इतना समय क्यों बर्बाद करते हैं? क्या डॉक्टर हारमन ये कहना चाह रहे हैं कि बौद्धिक बहसें, तार्किक स्पष्टीकरण और सवालों का जवाब देना पूरी तरह से बेकार है?
ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन डॉक्टर हारमन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तर्क बेकार है।
अच्छा, तो फिर तर्क का क्या काम है?
वे स्पष्ट करते हैं कि आपत्तियों को दूर करना और संदेश को तार्किक रूप से समझाना, जिसे हम बचाव या अपोलोजेटिक्स कहते हैं, वो बेहद जरूरी है। जब कोई सच में उलझन में हो तो उसके बौद्धिक सवालों का जवाब देना उस व्यक्ति के दिमाग से जाले साफ करने जैसा है।
हाँ, मतलब रास्ता साफ करना।
बिल्कुल, तर्क का काम रास्ते से पत्थरों और धूल को हटाना है, लेकिन रास्ता साफ हो जाने के बाद उस पर चलने का फैसला तर्क नहीं कर सकता। वो फैसला व्यक्ति की अपनी इच्छा और उसके हृदय पर निर्भर करता है।
हाँ, वो तो अंदर से ही आना चाहिए।
तर्क आपको दरवाजे तक ला सकता है, लेकिन दरवाजा खोलकर अंदर जाने का काम इच्छा शक्ति को ही करना होता है।
ये बहुत ही शानदार संतुलन है, दिमाग से जाले हटाना, लेकिन ये स्वीकार करना कि अंतिम निर्णय हृदय का ही होगा। अब अगर हम इस पूरे डीप डाइव की सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, प्रिटोरियन गार्ड्स का वो अप्रत्याशित VIP एक्सेस, अन्य लोगों के भीतर संक्रामक होती नहीं डरता, गलत मंशा वाले लोगों से अनजाने में होने वाला सही काम और तार्किक बहसों की सीमाएं।
हाँ, इन सबको जोड़कर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनती है।
बिल्कुल, तो हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये जीवन के परिस्थितियों को देखने के तरीके को जड़ से बदल देता है।
हाँ, और ये पैराडाइम शिफ्ट पॉलुस के उस लंबे समय से जुड़ा है जो उन्होंने कैद में बिताया।
5 साल का समय है ना?
हाँ, अगर हम समय की गणना करें तो पॉलुस ने कैसेरिया और रोम को मिलाकर कुल लगभग 5 साल कैद में बिताए। मानवीय दृष्टि से अगर हम सोचें तो ये एक श्रेष्ठ मिशनरी, एक इतने प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के जीवन के सबसे ऊर्जावान वर्षों की पूरी तरह से बर्बादी लगती है।
हाँ, बिल्कुल बर्बादी लगती है।
कोई भी सोचेगा कि अगर वे 5 साल बाहर होते तो न जाने कितने और देशों में घूम लेते, कितने और काम कर लेते।
बिल्कुल, अगर आज के समय में हम खुद को ऐसी स्थिति में पाएं जहां हमारे जीवन के 5 कीमती साल किसी ऐसी जगह छिन जाएं जहां हमारा कोई नियंत्रण ना हो, तो हम शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे।
हम टूट जाएंगे पूरी तरह से।
हाँ, हम यही सोचेंगे कि हमारा करियर बर्बाद हो गया, हमारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम आसमान की तरफ देखकर अक्सर यही पूछते हैं, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
हाँ, वाई मी वाला सवाल।
लेकिन पॉलुस का नजरिया इस आधुनिक सोच के बिल्कुल उलट था।
पॉलुस ने कभी ये नहीं पूछा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। उन्होंने जो सवाल पूछा वो पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है।
उन्होंने क्या पूछा?
उन्होंने पूछा, आप इन परिस्थितियों का उपयोग कैसे करेंगे, मतलब हाउ। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव है।
कैसे करेंगे, वाह।
हाँ, जब आप क्यों पूछते हैं तो आप अतीत में फंस जाते हैं, आप खुद को पीड़ित मान लेते हैं, लेकिन जब आप कैसे पूछते हैं तो आप भविष्य की ओर देखते हैं, आप उन सीमाओं के भीतर संभावनाओं की तलाश करने लगते हैं।
ये सच में बहुत गहरी बात है। अगर हम आज की अपने आधुनिक जीवन से इसकी तुलना करें तो हम पाएंगे कि आज की दुनिया में हमने आराम, जिसे हम कम्फर्ट कहते हैं, उसी को जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य मान लिया है।
बिल्कुल सही कहा आपने।
अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ आरामदायक है, कोई असुविधा नहीं है, तो हमें लगता है कि सब ठीक चल रहा है। अगर थोड़ी सी भी तकलीफ या रुकावट आती है तो हम पैनिक करने लगते हैं।
हाँ, हम बेचैन हो जाते हैं।
इसी वजह से हमारे लिए पॉलिस की तरह सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी पूरी ऊर्जा बस उस असुविधा से जल्द बाहर निकलने में लग जाती है।
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या हम सच में ये मानने का साहस रखते हैं कि एक बड़ी योजना में हमारी किसी भी परिस्थिति का, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक, सीमित या अवांछित क्यों न हो, उपयोग किसी महान उद्देश्य के लिए किया जा सकता है?
ये मानना सच में बहुत मुश्किल है।
हाँ, इंसान को ये स्वीकार करने में बहुत कठिनाई होती है कि सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा व्यक्तिगत आराम नहीं है, बल्कि एक व्यापक उद्देश्य की प्रगति है।
हाँ, और पॉलुस ने इसी बात को समझा।
बिल्कुल, पॉलुस ने अपनी 5 साल की कैद को एक त्रासदी या समय की बर्बादी के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे एक ऐसे विशेष मिशन के रूप में देखा जहां वे अन्यथा कभी नहीं पहुंच सकते थे।
तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का सार निकालें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास और समय अक्सर ऐसे तरीके चुनते हैं जो मानवीय तर्क के हिसाब से बेहद असामान्य और अप्रत्याशित होते हैं।
हमारी सोच से बिल्कुल परे।
बिल्कुल, कौन सोच सकता था कि दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के कुलीन गार्ड्स किसी बड़ी सेना से नहीं बल्कि एक कैदी के जंजीरों के जरिए प्रभावित होंगे।
हाँ, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
यह कि किसी व्यक्ति का उत्पीड़न और उसकी गिरफ्तारी देखकर लोग डरने के बजाय पहले से ज्यादा निडर हो जाएंगे। और सबसे दिलचस्प ये कि जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं वो भी अनजाने में आपके ही उद्देश्य का सबसे बड़ा प्रचार कर देंगे।
ये हमें ये सिखाता है कि जब भी हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करें जो हमें चारों तरफ से बांधती हुई महसूस हो, तो हमें अपनी सोच के पैटर्न को तोड़ने का अभ्यास करना चाहिए।
वो कैसे?
हमें मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि जगह इस चुनौती का उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए कैसे किया जा सकता है, ये पूछना शुरू करना चाहिए। ये एक साधारण सा सवाल किसी भी बंद कमरे की दीवारों को गिराकर उसे संभावनाओं के एक बहुत बड़े मैदान में बदल सकता है।
वाह, बहुत खूब। आज के इस गहन विश्लेषण से ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि कभी कभी जो चीजें इंसान को रोकती हुई प्रतीत होती हैं, वे असल में उसे सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम कर रही होती हैं।
हाँ, बिल्कुल।
शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे एक भयानक पीआर आपदा एक बहुत बड़े वायरल अभियान में बदल सकती है। पॉलुस के मामले में जिन लोहे की जंजीरों ने उन्हें बांधा हुआ था, वही जंजीरें अंततः उनके संदेश का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली लाउड स्पीकर बन गई।
ये एक बहुत ही सुंदर विचार है।
तो जब हम आज के इस डीप डाइव को खत्म कर रहे हैं, तो जरा इस बात पर विचार कीजिए, इंसान अक्सर अपने जीवन में आने वाली सीमाओं, रुकावटों या परेशानियों को एक बहुत भारी बोझ समझ लेता है।
हाँ, हम सब यही करते हैं।
वो बस उनसे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन क्या यह संभव है कि जिन्हें दुनिया एक अंत समझती है, जो सीमाएं आज सबसे ज्यादा बांध रही हैं, शायद वही किसी बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाने का या किसी बहुत बड़े बदलाव का सबसे बेहतरीन और गुप्त मंच हो?
सोचने वाली बात है।
इस विचार के साथ श्रोताओं के लिए ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।